नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्जायाण, नमो लोय सवसाहुण। ईसो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो मंगलानं च सवेसं पढ़मं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंत मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहुलो उत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली नमो अरहंताणम पद पर धवल ग्रंथ और चारित्र पाहुड़ ग्रंथ की टीका के आधार पर फिर नाणसार की जो सप्त द्वारों पर एक एक अक्षरों को स्थापित करके ध्यान करने की विधि है उस पर सुदर्शन चरित्र में सात अक्षरों द्वारा एक सुभग नामक ग्वाल बाल की एक भव में मुक्ति का वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ में ओंकार अर्थात प्रणव बीज सहित नमो अरहंताणम के ध्यान से तीर्थंकर भगवान के मुख का दर्शन आदि आदि अनेक विषय अपन ने पढ़े थे और अर्ह धातु से जो नमो अरहंताणम बना है उसमें हन धातु नहीं है इसलिए वहां पर अरहंताणम, वो अरहंत ह के ऊपर रेफ करके संस्कृत में अगर उसकी छाया करें तो नमोह नमः अरहद्भ्यः, संधि करें तो नमोरहद्भ्यः अरहद्भ्यः, तो उसका अर्थ प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने क्रियाकलाप ग्रंथ में इस प्रकार दिया, शतेन्द्रादि विनिर्मिताम अतिशयवतीम पूजाम अर्हंतीत्यर्हंतः। सौ इंद्र आदिकों के द्वारा रची गई अतिशय संपन्न अर्थात सबसे बढ़कर पूजाम, जो पूजा है उसके अर्हंतीत्यर्हंत, जो अर्ह है अर्थात योग्य है वे अर्हंत है। कल्याणकों की पूजा के जो योग्य है अर्थात जो पात्र हैं उन्हें अर्हंत कहते हैं, तो वे अर्हंत तीर्थंकर हैं। ये अर्हंत पद का प्रथम अर्थ था, नमो अर्हंताणम का एक अर्थ हुआ तीर्थंकरों को नमस्कार। लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ है वो भी अपन ने पढ़ा, वो अर्थ ये था अ से अरी लिया उन्होंने और र से रज और रहस्य लिया, तो अरी चारों गतियों में जीव को भटका भटका कर पीड़ा प्रदान करने वाला अर्थात शत्रु का कार्य करने वाला मोह कर्म है। तो अरि शब्द में से केवल अ लिया है और फिर र से दो प्रकार के र लेंगे, एक र रज, रज का अर्थ धूल होता है, रज कण, हे प्रभु आपके चरणों की रज कण मुझे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। भक्ति में अपन ये वचन बोलते हैं जिनेंद्र भगवान से, और वो रज कण कैसे मिलती है, गंधोदक से मिलती है, तो गंधोदक को मस्तक पर और अन्य स्थानों पर धारण करते हुए जिन भक्त अपने आप को धन्य भाग्य मानता हुआ आह्लादित होता है, भक्ति के आनंद में डूब जाता है, भाव विभोर हो जाता है, ये भक्ति हृदय में होती है, बुद्धि में नहीं होती, और इसमें तर्क नहीं होते, समर्पण होता है। एक शिष्या से उसकी एक सहेली पूछती है कि तुम्हारे गुरु तुम्हारा उपचार कर सकते हैं, तुम्हें इतनी वेदना है, तुम भयंकर व्याधि से ग्रस्त हो, तुम वहां जाकर के उनसे प्रार्थना क्यों नहीं करती। तब उसने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत उत्तर था, ये दृष्टांत हमने कहीं पर पढ़ा था और ये दृष्टांत प्रभु के विषय में था, हम उसको गुरु के विषय में बता रहे हैं, कि वो कहती है कि मैं इसलिए गुरु को अपनी पीड़ा नहीं सुनाती क्योंकि मुझे वहां जाकर सुनना अच्छा लगता है। मैं सुनाऊंगी तो सुनने का समय घट जाएगा, कट जाएगा। दूसरी बात, प्रार्थना इष्ट की जाती है और मेरे इष्ट गुरु हैं तो मैं उनसे उनसे छोटी वस्तु कैसे मांगू। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हे गुरु, हे गुरुवर, आप ही मुझे हमेशा प्राप्त रहो। और तीसरी बात यह है कि जब गुरु मुझे प्राप्त हैं तो वो कहीं भी हो, मुझे तो वो मेरे हृदय में प्राप्त हैं ही, इसलिए मेरे हृदय में उनके रहते जो कुछ भी इस व्याधि द्वारा उपद्रव होगा, जो भी होगा, जो भी इसका अंत होगा, वो भला ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरु के रहते जो होगा वो भला होगा, इसलिए मैं उनसे अपने उपचार की प्रार्थना नहीं करती। इसका नाम भक्ति है। तब भी ये निष्काम भक्ति की श्रेणी में है। निष्काम भक्ति दो प्रकार की भक्तियों में उत्तम गिनी जाती है। एक सकाम भक्ति भी होती है, दूसरी निष्काम भक्ति होती है। सकाम भक्ति वो करते हैं जिनकी सहन शक्ति अल्प है, वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जो मुझे पीड़ा हो रही है ये पीड़ा दुर्ध्यान उत्पन्न कर रही है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मुझमें सध्यान की शक्ति उत्पन्न हो, आप मुझे सध्यान करने की शक्ति दो। तो सध्यान करने की शक्ति वो मांगता है, पर ऐसा है कि उसमें पुण्योदय और कुछ आवरण कर्म के क्षयोपशम का होना आवश्यक होता है। यदि इसके कर्म अधिक प्रबल हुए तो फिर शक्ति नहीं बढ़ेगी, पर वो अपनी भक्ति बढ़ा सकता है और फिर कभी जैसे बच्चे को भूख लगती है तो वो माँ से कहता है कि बस मुझे भोजन दो, और उसके अंदर जैसी सरलता होती है, सहजता होती है, वैसा ही निश्चल भाव उस भक्त के अंदर भी होता है कि भगवान मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, आप जो करना है करो, मैंने सब कुछ आपको आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप मेरा उद्धार करो। तो फिर ये भी एक प्रार्थना है कि उस संकट से वो भक्त जो उसकी सहन शक्ति से बाहर जा रही है, उसकी शक्ति, संकट की शक्ति भक्त की शक्ति से अधिक प्रबल हो रही है, तब फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, जैसे ये सकाम भक्ति के कुछ उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं, लगभग 300 से अधिक रामायणों का आज प्रकाशन हो चुका है, उनमें अनेक जैन रामायण भी हैं। रामचरित्र नाम की एक जैन रामायण है, एक पद्म पुराण नाम की जैन रामायण है, एक उत्तर पुराण में आई हुई जैन रामायण है, एक सप्त व्यसन चरित्र में जैन रामायण है, एक पौमचरियु स्वयंभू नामक एक कवि ने अपभ्रंश भाषा में लिखी है, वो जैन रामायण है, एक विमल सूरीकृत पौमचरीय जैन रामायण है, प्राकृत में है वो, और ऐसे अन्य भी। दक्षिण भाषा में, कर्नाटकी भाषा में भी एक पंप रामायण, अभिनव पंप नागेंद्र कवि विरचित जैन रामायण है। तो ये 7 जैन रामायणों के नाम तो हमने लिए, फिर इतर संप्रदायों में भी अनेक रामायण हैं। 300 से अधिक रामायण प्रकाशित है। अब जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, तब सीता जी भगवान की भक्ति करते हुए प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे देवर की रक्षा करना, और भाव विभोर होकर के ऐसी प्रार्थना करती है कि उसके आंखें थोड़ी भीग जाती है, गला भर आता है। सच्ची प्रार्थना कभी विफल नहीं होती, निरर्थक नहीं होती। असंभव को संभव बनाने की शक्ति प्रार्थना में होती है। भक्ति की शक्ति कर्मों की शक्ति से बढ़कर होती है। तो ये सकाम भक्ति है। सीता जी ने जो प्रार्थना की है ना, ये सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति नहीं है। और इसी तरह राजा अकंपन थे आदिनाथ भगवान के काल में, उनकी महारानी सुभद्रा थी और उनकी पुत्री सुलोचना थी, और सुलोचना जो थी कृत युग का प्रथम स्वयंवर, आप ये समझ लीजिए कि हुंडाव सर्पिणी काल में जो पहला स्वयंवर हुआ था वो सुलोचना का हुआ था, और राजकुमारी सुलोचना का जब स्वयंवर महोत्सव था तो उस महोत्सव में अनेक राजा राजकुमार आमंत्रित थे। चक्रवर्ती का पुत्र अर्क कीर्ति और चक्रवर्ती का सेनापति जय कुमार भी उस स्वयंवर सभा में उपस्थित था, दोनों उपस्थित थे। अब योग संयोग ऐसा बनता है कि मान सम्मान में तो चक्रवर्ती का पुत्र बड़ा था, लेकिन तब भी वरमाला जय कुमार के कंठ में डल जाती है। अब कान भरने वाले, भड़काने वाले लोग अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं, तो उस समय अर्क कीर्ति से किसी ने कह दिया, घोर अपमान है ये, एक चक्रवर्ती के सम्राट का जो पुत्र है उसके कंठ में राजकुमारी ने वरमाला न डालकर सेनापति के कंठ में डाल दी। ये चक्रवर्ती का और चक्रवर्ती के पुत्र का, चक्रवर्ती के संपूर्ण परिवार का भयंकर अपमान है। अर्क कीर्ति उस कन्या को देखकर आकर्षित तो हुआ ही था, लेकिन जब ये वाक्य उसने सुना तो फिर स्वयंवर के जो नियम है वो यद्यपि स्वयं राजा अकंपन ने सुना दिए थे कि इस युग का यह प्रथम स्वयंवर है, और स्वयंवर शब्द अपने आप में कहता है कि स्वयंवर, कन्या स्वयं अपने वर का चयन करती है, वरण करती है। स्वयं वरयते कन्या यत्र वरन, जिसमें स्वयं कन्या वर का वरण करती है वह स्वयंवर होता है। अब वो बुरा मान गया अर्क कीर्ति, राजकुमार था, भरत चक्रवर्ती का पुत्र था, बुरा मान गया, और उसने अपने मुख से कहा हे अकंपन राजन, क्या आपने हम राजा और राजकुमारों को यहां अपमानित करने के लिए बुलाया, हमें नीचा दिखाने के लिए बुलाया? हम इस वरण को अस्वीकार करते हैं, और यदि यह कन्या किसी के योग्य है तो वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर केवल मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता जिसका यह कन्या वरण करे। राजा अकंपन विनयपूर्वक कहते हैं कि हे राजपुत्र, हे चक्री पुत्र, मैं क्षमा चाहता हूं, स्वयंवर की विधि ही कुछ ऐसी थी कि जिसमें चयन का अधिकार केवल कन्या को था, मैं क्या कर सकता हूं। अर्क कीर्ति कहता है कि यह कन्या केवल मेरी होगी, अन्य किसी की नहीं, और यदि किसी ने प्रतिरोध किया तो मैं प्रतिकार करूंगा। जब राजा अकंपन ने यह वाक्य सुना तब वो चिंतित हो गया और उसने सेनापति से कहा कि कन्या की रक्षा के लिए सैन्य को उपस्थित करूं। तब जयकुमार ने आकर के राजा का अभिवादन किया, उसके कंठ में वरमाला शोभित हो रही थी, और राजा से कहा कि राजन, चूंकि कन्या ने मेरा वरण किया है और वृषभदेव तीर्थंकर के मतानुसार कन्या अपने जीवन में एक बार वर का वरण कर सकती है, अब यह मेरी है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, केवल एक रथ का मेरे लिए प्रबंध कर दीजिए, मैं देखता हूं इस कन्या पर कैसे आंच आती है। राजा कहता है कि हे जय कुमार, आप अकेले और वो चक्री पुत्र की विशाल सेना, जय कुमार कहते हैं मुस्कुराते हुए कि राजन, मैं चक्री का सेनापति हूं और वो सेना चक्री पुत्र की, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं देखता हूं। तब राजा ने उसको रथ दे दिया और जय कुमार एक ऐसे क्षेत्र पर अपने रथ को ले गया। कन्या से कहा कि अभी तुम यहां रहो, मैं अभी आता हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहना। लेकिन कन्या को चिंता तो हो ही रही थी कि मैंने जिनका वरण किया है, वरण करते ही साथ ये युद्ध की स्थिति उपस्थित हो गई है, और इतनी बड़ी सेना वहां सामने विपक्ष की खड़ी हुई है, मेरे स्वामी की रक्षा कैसे होगी? मेरे स्वामी उस सेना पर विजय प्राप्त करने गए हैं। अपने स्वामी की चिंता थी, तो वो जिनालय में जाती है। माता सुभद्रा भी जिनालय में जाती है और वहां पर भगवान के समक्ष विधिवत देव वंदना करके और रत्नों के पुंज चढ़ाकर फिर खड़ी होती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे जिनेंद्र, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। मैंने अभी अभी अपने स्वामी का वरण किया स्वयंवर सभा में, लेकिन ऐसी विकट संकट की स्थिति उपस्थित हो गई, मेरे स्वामी की रक्षा करना, और जब तक मेरे स्वामी सुरक्षित लौट करके नहीं आ जाते, मैं अन्न जल का त्याग करती हुई, यहां संकल्प पूर्वक अन्न जल का त्याग करके कायोत्सर्ग में खड़ी रहूंगी, खड़ी हो गई वो कायोत्सर्ग में, और वहां घमासान युद्ध होता है और अंत में जयकुमार विजयी होकर के लौट आते हैं। ये सकाम भक्ति पूर्वक की हुई प्रार्थना थी। तो शास्त्रों में अनेक सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा सकाम भक्ति का भी वर्णन मिलता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जीवन में जो निष्काम भक्ति के प्रसंग रूप नहीं होती, तब उस प्रसंग में सकाम भक्ति की जाती है। तो नमोकार पद, नमोकार के पांच पद हैं, उनकी आराधना निष्काम भक्ति से भी संभव है, सकाम भक्ति से भी संभव है। नमो अरहंताणम, इस पद में जो दूसरा अर्थ था उसी पर अपन चर्चा कर रहे थे। अ से अरि शब्द को ग्रहण किया और अरि मोह को बताया, क्योंकि वह मोह संसारी प्राणी को, इस जीवात्मा को चारों गतियों में भटकाकर दुख प्रदान करता है। जो कार्य शत्रु का है वह कार्य मोह करता है, तो वस्तुतः अपने भीतर बैठा हुआ शत्रु मोहनीय कर्म है। तो अ से अरि और अरि से मोहनीय कर्म ग्रहण किया, फिर र से रज और रहस्य दोनों को ग्रहण किया, क्योंकि र से दोनों अर्थ घटित होते हैं और रज के दो भेद होते हैं, कभी ज्ञान पर धूल आ जाती है, कभी दर्शन पर धूल आ जाती है। तो ज्ञानावरण भी एक प्रकार की रज है और दर्शनावरण भी एक प्रकार की रज है, और रहस्य जो है वो अंतराय कर्म है। किसी को पता ही नहीं चलता कैसे काम अटक जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, सब कुछ कर चुके, पूरा रास्ता साफ हो चुका, लेकिन फिर अचानक सब ठप हो जाता है काम। अंतराय कर्म रहस्यपूर्ण होता है, छुप करके काम करता है, विघ्न अपन जो डालते हैं दूसरों के कामों में, तब अपने को जो कर्म बंद होता है, विघ्न करण अंतरायस्य, छठे अध्याय का अंतिम सूत्र तत्वार्थ सूत्र में, उसका बंद होता है अपने को। दर्शन मोहांतराय योर दर्शना लाभो। नवम अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है कि जो अलाभ का कष्ट होता है साधु को, भिक्षाचर्या से भोजन के लिए निकले हैं लेकिन आहार का लाभ नहीं होता, अलाभ हो जाता है, आहार मिल नहीं पाता, तो ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, अंतराय का उदय होने पर यह स्थिति बनती है। साथ में अन्य कर्म भी कार्य करते हैं, अंतराय का उदय बारहवें गुण स्थान तक रहता है, तो जब अंतराय के साथ साथ असाधा वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का भी तीव्र उदय हो तब यह स्थिति बनती है। भोजन करते करते विघ्न आ जाता है बीच में, और शास्त्रों में लिखा है कि 32 ऐसे प्रसंग है जहां साधु आहार त्याग दे, 32 अंतराय बताए हैं साधु के, काक अमेध्य छर्दी जानवध परामर्श नाभे रदह निर्गमन, भूमि स्पर्शन, 32 अंतराय बताए हैं मुनिराज के। आहार के बीच में अगर हाथ घुटने से नीचे लग जाए, इतना झुक जाए साधु कि हाथ घुटने के नीचे लग जाए, किसी कारण से लग जाए, कोई कई स्थितियां बन सकती है। मान लो कोई कीड़ा पैर पर चढ़ने लग जाए और साधु उसको ऐसे वहां से हटा दे, दूर कर दे, आहार के बीच में पिच्छी तो नहीं उठा रहे लेकिन ऐसे दूर कर दे और उनका हाथ घुटने से नीचे छू जाए तो अंतराय होता है। सिद्ध भक्ति करने के बाद अगर भूमि का स्पर्श हो जाए हाथ से तो अंतराय होता है। सिद्ध भक्ति की और बिना भूमि को छुए खड़े होकर के फिर आहार ग्रहण करते हैं, भूमि स्पर्श करने पर अंतराय होता है। तो ऐसे 32 अंतराय बताए। तो पंडित दौलत राम जी ने जो जिनेंद्र भगवान की एक विनती लिखी है उसमें उन्होंने पहले दोहे में यही सूचित किया है कि भगवान अ और र के हंता है, उनसे रहित है, उनसे विहीन है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। संपूर्ण ज्ञेय के ज्ञायक सर्वज्ञ है लेकिन निजानंद रसलीन है, वीतराग है, और वीतराग होने के कारण आनंद से परिपूर्ण है। जब तक राग है तब तक जीव दुखी होता है, वीतराग है तो आनंद मग्न है। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, वो जिनेन्द्र भगवान नित जयवंत है। सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयति, सबसे ऊपर उनका स्थान है इसलिए उनको विजयी कहा है। विजयी वही तो होता है जो सबसे ऊंचा हो, सर्वोत्कृष्ट हो। और अपन बार बार जयकार क्यों लगाते हैं, ये भी एक बड़ी सुंदर बात है, एक विचारणीय प्रश्न है। जय क्यों लगाते हैं अपन, भगवान की जय क्यों बोलते हैं? भगवान की जय हो बोलते हैं ना, किस पर जय हो भगवान की? भगवान को जिस पर विजय प्राप्त करनी थी उस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, तभी तो भगवान है वो। अब अपन किस पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं? भगवान की, भगवान की जय हो, किस पर जय हो? है मजेदार बात। पंडित जगनमोहन लाल जी ने इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया था, कटनी वाले जगनमोहन लाल शास्त्री जी, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य शांति सागर महाराज श्री के बड़े भक्त थे और 8 दिन परीक्षा लेकर भक्त बने थे, और वर्णी जी के भी बड़े भक्त थे। तो उन्होंने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? भगवान की जय हो। अब भगवान ने तो जिस पर जय प्राप्त करनी थी, जो अंतरंग शत्रु थे, विकार थे, उन सबको जीत लिया। अब अपन जो बोल रहे हैं कि उनकी जय हो, वो उसमें आत्महित की भावना छुपी हुई है, अपने कल्याण का अभिप्राय गर्भित है। वो कैसे? तो हे भगवान, आपने जिनको जीतना था उनको आपने जीत लिया, तभी तो आप जिन हो। जिन का अर्थ क्या होता है? जयति कर्मारातीन इति जिनः, कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने वालों को जिन कहते हैं। और जिनेंद्र किनको कहते हैं? कर्म शत्रुओं को जीतने वालों के जो इंद्र है, अर्थात जो जिनों के प्रधान है, जिनों के बीच जो प्रमुख है, उनको जिनेंद्र कहते हैं। तो तीर्थंकर हो गए जिनेंद्र। तो आपने सब कुछ जीत लिया, आपको जो जीतने थे, जो शत्रु जीतने थे, वो जीत लिया आपने। अब मैं आपका एक भक्त हूं, मैं जिन भक्त हूं, मैं आपके निकट आना चाहता हूं, और आपके निकट तब तक नहीं आ सकता जब तक मेरे कर्म रूपी शत्रु अवरोध डालते रहेंगे, मुझे बाधित करते रहेंगे, मुझे विकारी बनाते रहेंगे, मुझे भ्रमित करते रहेंगे। इसलिए हे भगवान, आपकी मेरे कर्मों पर भी विजय हो, अर्थात आप मेरे कर्मों को जीतो, मुझे इतनी मदद दो कि निश्चय से तो मेरे कर्मों को मुझे ही जीतना है, लेकिन व्यवहार से मुझे आपकी शक्ति आवश्यक है। मैं तो दुर्बल हूं और मुझे शक्ति कहां से प्राप्त होगी? आपके अतिरिक्त तो मुझे शक्ति कौन देगा? इसलिए मुझे आपकी शक्ति चाहिए, और आप मुझे शक्ति दोगे तो मैं उस शक्ति का श्रेय अपने को नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे जो शक्ति मिली थी उस शक्ति से मैंने कर्मों को जीता। मैं यही कहूंगा कि आपने मेरे कर्मों पर विजय प्राप्त की, और इसीलिए मैं भक्ति की भाषा में यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी जय हो, मेरे कर्मों पर भी आपकी जय हो। आपने अपने कर्मों पर तो विजय प्राप्त की, आप मेरे कर्मों पर भी विजय प्राप्त करो। इस बात को तात्विक रूप से समझना आवश्यक है। अभी जो जो बातें हमने कही, आप सावधानी से उनके अर्थों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जयकार का क्या महत्व है। फिर जब कोई आचार्य अपने से छोटों का जयकार लगाते हैं, ऐसे भी कुछ प्रसंग बताए गए हैं, जैसे आचार्य राजा को आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी जय हो। तो तुम्हारी जय हो, ये जो आशीर्वाद दिया है राजा को, उसका अभिप्राय क्या है ये समझना होगा। राजा गुरु से तो बड़ा नहीं हो सकता, राजा प्रजा से बड़ा है लेकिन गुरु से छोटा है। फिर भी गुरु उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी जय हो, तुम्हारे शासन में जो भी अनीति, अनाचार आदि संभावित दोष हैं उन पर तुम्हारी विजय हो। और तुम्हारे राज्य शासन में जो बाधक तत्व है, जो विपक्ष हैं, जो शत्रुजन हैं, तुम्हारे निष्कंटक शासन को, तुम्हारे राज्य को प्रदूषित करना चाहते हैं, तुम्हारे यहां अशांति पैदा करना चाहते हैं, उन पर तुम्हारी विजय हो। जैसे अब आप पूछेंगे कि कहीं कोई जैनाचार्य ने भी ऐसे कोई वचन बोले हैं क्या, किसी राजा को विजयी होने का आशीर्वाद कोई जैनाचार्य ने दिया है क्या, उसका कोई उदाहरण है क्या? तो ऐसा प्रश्न यदि उठे किसी के मन में, तो हम उसके लिए शास्त्र का आधार प्रस्तुत करते हैं। आप शांत भाव से, विनम्र भाव से देखना। गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के प्रतिष्ठा महोत्सव में जो प्रधान आचार्य उपस्थित थे, विराजमान थे यहां, उनका शुभ नाम श्रीयुत सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद आचार्य महाराज था। श्रद्धा से हम उनको नमस्कार करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। एक किंवदंती है, एक ऐसी चर्चा सुनने में आती है कि यहां पर एक आचार्य नेमिचंद्र स्वामी की गुफा भी है। आप सीढ़ियों से जब चढ़ेंगे ना, तो बीच में आपको एक गुफा मिलेगी विंध्यगिरी में। तो आचार्य महाराज वहां पर छक्खंडागम ग्रंथ की वाचना कर रहे थे, उसका स्वाध्याय कर रहे थे। और संयोग बना ऐसा कि उस समय वीर मार्तंड चामुंडराय गुरु वंदना के लिए पधारे। तो आचार्य श्री ने ग्रंथ को बंद कर दिया, वाचना स्थगित कर दी, कायोत्सर्ग करके स्वाध्याय का निष्ठापन कर दिया। राजा ने गुरु की वंदना की और अनुमति मांगी कि हे गुरुवर, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, क्या पूछ सकता हूं? गुरु ने कहा कि अवश्य, क्या पूछना चाहते हो चामुंडराय? तब चामुंडराय कहते हैं कि गुरुवर, मेरे आपने आने पर आपने स्वाध्याय बंद क्यों किया? तब गुरु कहते हैं कि सूत्र सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा था और इसकी वाचना सबके समक्ष नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने बंद कर दिया। तब राजा ने कहा कि हे गुरुवर, सूत्र सिद्धांत की वाचना यदि सबके सामने नहीं की जा सकती, तो फिर हम जैसे लोगों को जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत का कैसे बोध होगा? हम भी कुछ समझना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि हम उसका प्रबंध करेंगे। तो उन्होंने मूल सूत्र सिद्धांत को सुरक्षित रखा और राजा चामुंडराय के निमित्त उन्होंने गुम्मटसार जीवकांड और गुम्मटसार कर्मकांड की रचना की, जिसमें धवला का सार था और पांच विषयों का संग्रह था, पंच संग्रह कहते हैं जिसको। और ये पंच संग्रह उनके लिए वर्जित नहीं था। पंच संग्रह का स्वाध्याय करना निषिद्ध नहीं है, सूत्र सिद्धांत का स्वाध्याय वर्जित था। तो गुम्मट सार कर्म कांड के अंत में उन्होंने जो गाथाएं लिखी है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। बड़ी सुंदर गाथा है। ये बड़े जानकारी का विषय है। अधूरे ज्ञान के कारण अपन बहुत सारी बातों से अनजान है, तो इसको अपन देखें तो फिर पता चले कि कितनी सुंदर बात है। यहां गुम्मट संघ सुत्तम गुम्मट देवेण गुम्मटम रैयम कम्माण निज्जरठम तच्चट्ठव धारण ठंच। जो यह गुम्मट सार ग्रंथ का संग्रह रूप सूत्र है वह श्री वर्धमान नामक तीर्थंकर देव ने नय प्रमाण के गोचर कहा है, और वह ज्ञानावरण आदि कर्मों की निर्जरा के लिए तथा तत्वों के स्वरूप का निश्चय होने के लिए जानना चाहिए। जम्मी गुणानि विसंता गणहर देवादि इड्डिपत्ताणम सो अजियसेन ना हो जस गुरु जयऊ सो राओ। ध्यान से सुनना। जिसमें बुद्धि आदि रिद्धियों को प्राप्त गणधर देवादि मुनियों के गुण विश्राम को प्राप्त होकर ठहरे हुए हैं, अर्थात गणधर आदिकों के समान जिनके गुण हैं, ऐसे अजितसेन नामक मुनिनाथ अर्थात आचार्य जिसको व्रत देने वाले गुरु हैं, वह चामुंड राय सर्वोत्कृष्ट पने से जय पाओ। देखो, चामुंड राय के लिए उन्होंने विजय का आशीर्वाद दिया कि गणधरों के समान इस पंचम काल के योग्य जिनमें गुण थे, ऐसे अजितसेन नामक आचार्य हुए हैं, और अजितसेन नामक आचार्य से चामुंड राय ने व्रत धारण किए थे। तो जिनसे चामुंड राय ने व्रत धारण किए वे गुरु अजित सेन थे, और जिन्होंने व्रत धारण किए वो चामुंड राय राजा थे, तो वो जयऊ जयवंत हो। सो राओ, वो राजा जयवंत हो। फिर एक सुंदर बात लिखी है, सिद्धंतुदय तडुगय निम्मलवर नीमिचंद कर कलिया गुणरयण भूषणम बुहि मई वेला भरव भुवन यलम। सिद्धांत रूपी उदयाचल पर ज्ञानादिक से उदयमान हुए निर्मल और उत्कृष्ट श्री नेमिनाथ तीर्थंकर रूपी चंद्रमा की अथवा नेमिचंद्र आचार्य रूपी चंद्रमा की वचन रूपी किरणों से बंधी हुई गुण रूपी रत्नों से शोभित ऐसे चामुंडराय रूपी समुद्र की बुद्धि रूपी वेला अर्थात बुद्धि रूपी तट इस पृथ्वी तल को पूरित करो अथवा समस्त जगत में अतिशय विस्तार को प्राप्त हो। यहां भी चामुंडराय के विषय में उन्होंने एक भावना की है। फिर गोम्मट संगह सुत्तम गोम्मट सिंह रुवरी गोम्मट सिंह रुवरी गोम्मट जिणोय गोम्मट राय विनिम्मिय दक्षिण कुक्कुड़ जिणो जयउ। गोम्मट सार संग्रह सूत्र, फिर गोम्मट शिखर के ऊपर चामुंडराय राजा द्वारा बनवाए जिन मंदिर में विराजमान एक हाथ प्रमाण इंद्र नील मणि से रचित नेमिनाथ तीर्थंकर देव की प्रतिमा जिनको दक्षिण कुक्कुट जिन कहते हैं तथा उसी चामुंडराय द्वारा निर्मापित लोक में रूढ़ी कर प्रसिद्ध दक्षिण कुक्कुट नामा जिनेंद्र का प्रतिबिंब जयवंत हो। देखो जयकारा कितने प्रकार से लगा रहे हैं आचार्य महाराज। और इसके बाद गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का नाम लिखा उन्होंने। जीण विणिमिय पटिमा वयणम सब वट्ठ सिद्धि देवे ही सव परमो ही जोगी ही दिठम सो गोमटो जयऊ। जिसके द्वारा विनिर्मित प्रतिमा के मुखड़े को सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने और विदेह क्षेत्रगत सर्वावधि और परमावधि रिद्धि से संपन्न योगियों ने देखा वह गोम्मटो गोम्मट राजा। अब उसका नाम राजा, राजा का नाम चामुंडराय तो था ही लेकिन उसको गोम्मट भी कहा जाता था। वह गोम्मट राजा जयउ विजयी हो जयवंत हो। ये आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखिए भगवान बाहुबली का नाम गोम्मटेश क्यों है, क्योंकि राजा गोम्मट के वो ईश है इसलिए गोम्मटस्य ईशः गोम्मटेशः और गोम्मटस्य ईश्वरः गोम्मटेश्वरः इसलिए इनको गोम्मटेश कहते हैं। वज्जयणम वज्जयलम जिण भवनम ईसिप भारम सुवर्ण कल संतु त्रिवण परिमाणिकम जिण कयम चयौ सो राओ। 970वीं गाथा में आचार्य कह रहे हैं कि जो ग्रेनाइट वज्र के समान जिसका तल है प्रतिमा के नीचे पूरा ग्रेनाइट ही है, पूरा पहाड़ एक अपेक्षा से ग्रेनाइट का है वो, तो वो जो जिन भवन है जहां पर भगवान विराजमान है वो वज्र तल ग्रेनाइट से बना हुआ है। ईसिप भारम सुवर्ण कलसम तु और सिद्धालय जो है ऊपर गोमटेश्वर भगवान के ऊपर जब जब महामस्तक अभिषेक होता है तब एक स्वर्ण कलश लगता है, तो जो स्वर्ण कलश है वो सिद्धालय है ऐसा समझ लो। और त्रिभुवन परिमाणिकम जेण कयम और तीन भुवन में अद्वितीय प्रतिमा के रूप में बाहुबली भगवान जी वज्रतल और सिद्धालय के बीच में गोमटेश्वर भगवान विराजमान है, तो जिन्होंने ऐसी रचना की है ऐसे जिनालय का निर्माण कराया है वो राजा चामुंडराय जयवंत हो अद्वितीय है। और इसके बाद कह रहे हैं जीणु भियथंभुवरिम जख तिरी टग किरण जल धोया सिद्धान शुद्ध पाया सोराओ गोम्मटो जयउ। जिनके द्वारा उद्भित स्तंभ के ऊपरिम भाग में यक्ष है और यक्ष के तिरीट के अग्र भाग में जो भी रत्न है उस रत्न की किरण के जल से धौत है सिद्धों के शुद्ध पाद जिनके द्वारा। अभिप्राय ये हुआ कि गोमट राजा ने अर्थात चामुंड राय ने एक स्तंभ बनवाया था और उस स्तंभ के ऊपर एक यक्ष को स्थापित किया था और यक्ष के मुकुट में जो अग्रभाग है वहां पर एक रत्न जड़ित किया था। उस रत्न की किरणों के किरण रूपी जल से भगवान बाहुबली के चरण हमेशा प्रक्षालित होते रहते थे। ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है। आज अपने को वो रत्न नहीं मिलता वहां पर, और कुछ भट्टारकों के मुख से हमने सुना है कि वही रत्न आज कोहिनूर के रूप में भारत के बाहर जा चुका है। वो इतना बड़ा कोहिनूर हीरा था कि उसकी किरणों से भगवान के चरण हमेशा प्रकाशित रहते थे। तो आचार्य महाराज ने अलंकारिक भाषा में कहा कि वो किरण, तो किरण क्या, जल थी वो, और उससे भगवान के चरण धुलते रहते थे। तो जिस राजा ने ऐसा निर्माण कराया, सो राओ गुम्मटो जऊ जयऊ, वे राजा गुम्मट जयवंत हूं। और अंतिम गाथा जो है ग्रंथ की, उसमें आचार्य कहते हैं गुम्मटिस गुम्मट सुतलिहणी गुम्मट रायण जो कया देसी सोराओ चिरकालम नामेण वीरम तंडी। ये जो गुम्मट सूत्र नेमिचंद आचार्य महाराज ने लिखा है, उसके लिखने में गुम्मट राजा ने जो स्थानीय भाषा में, अब इससे ये सूचित होता है कि आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ की रचना संभवतः ब्राह्मी लिपि में की हो, लेकिन ब्राह्मी लिपि स्थानीय भाषा रूप नहीं थी, तो राजा गोमट ने उसको देशी लिपि में रूपांतरित कराया। अर्थात राजा ने हड़े कन्नड़ में गोमट संग्रह सूत्र की लिपि करवाई। सो राव चिरम कालम नामेण वीर मत्तंडी, तो वह राजा चिरकाल तक जयवंत हो। जिस नाम की अपेक्षा क्या नाम है राजा का, लोग उसको किस नाम से पुकारते थे, लोग चामुंडराय नहीं बोलते थे, लोग उसको गोमट नहीं बोलते थे, लोग उस राजा को वीर मत्तंडी बोलते थे, वीर मारतंड बोलते थे। मारतंड का अर्थ सूर्य होता है, और जो वीरों में सूर्य है ऐसा राजा गोमट चामुंड राय वीर मारतंडी कहलाता है यहां के स्थानीय जनता के मुख में। तो इस तरह अपन ने देखा कि जब अपन भगवान का जयकार लगाते हैं तब अपन अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जयकार जो होता है वो बड़ों का भी हो सकता है और छोटों का भी हो सकता है। तो अपन ने देखा कि आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने राजा का जयकार इस ग्रंथ के अंत में लगाया। राजा के निमित्त से ही उन्होंने षटखंड आगम का सार, और ऐसा सार जो पंच संग्रह रूप है, वो राजा के लिए प्रस्तुत कर दिया ग्रंथ रचना करके। नमो अरहंताणम बोलते समय जयति भगवान भी एक सूत्र है। एक गौतम गणधर महाराज के मुख से निकले हुए वचन में गौतम गणधर ने क्या किया था कि जब वो भगवान के भक्त बन गए, जब वो गणधर हो गए, उन्होंने फिर भगवान की एक स्तुति लिखी थी। लिखी भी क्या थी, वो तो लिखने की उनको आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने स्तुति की थी। उस स्तुति में उन्होंने जयति भगवान, महावीर भगवान के विषय में जयकार किया था। भगवान जयवंत है, संसार में सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो नमो अरहंताण में चार घाती कर्मों का हनन करने वाले अ और र के जो हंता हैं, उनको भी नमस्कार किया जाता है। नमो अरहंताणम। तो चार घाती कर्म के हंता तो अकेले तीर्थंकर नहीं है, सातों केवली हैं। तो सातों केवली का वर्णन अपन फिर आगामी सत्रों में देखेंगे। आज यहीं पर अपन स्वाध्याय को निष्ठापित कर रहे हैं। जैनम जयतु शासनम।